ஓம் சாந்தி. ஆஜ் ஹமாரே பீச் விஷேஷ் பட்டி கி கிளாஸ் கரானே கே லியே அதக் சேவாதாரி திவ்ய புத்தி தாரக் ஆத்யாத்மிக் பிரக்யா கே சுவாமி மேக்னெட்டிக் பர்சனாலிட்டி வாலே ராஜயோகினி உஷாபென் ஜி பதாரே ஹே ஹம் சப் ஏக் ஹாத் கி தாலி சே தோ ஹாத் கி தாலி சே பஜ் கயி ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹே ஸ்வாகத் ஹே ஸ்வாகத் ஹே ஸ்வாகத் ஹே ஐசே தோ மே சமஜ்தி ஹூ சப் ஜான்தே ஹி ஹே உஷாபென் ஜி கோ பஹுத் குச் சுனா ஹே தேகா ஹே அனுபவ் கியா ஹே ஆர் இஸிலியே ஆஜ் தேக்தே ஹி சப் குஷ் ஹோ கயே சுபஹ மே நாம் சுன்தே ஹி குஷ் ஹோ கயே தே கி ஆஜ் கிளாஸ் கிஸ்கி ஹே தோ ஆப் கரீப 40 சால் சே பாபா கே ஈஸ்வரிய யஜ்ய மே சமர்ப்பித் ஹோகர் சேவாயே தே ரஹே ஹே ஷுரூ மே பம்பை ஆர் ஹைதராபாத் மே அப்னே சேவாயே கி ஆப் சப் ஜானதே ஹோங்கே ஹைதராபாத் மே நாகார்ஜுன் ஃபர்டிலைசர் ஜஹா மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினிங் சென்டர் கோலா தா ஆர் வஹா பி ஆப்னே அப்னி பஹுமூல்ய சேவாயே தி வா பி சப்கோ மேனேஜ்மெண்ட் கி ட்ரெயினிங் செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கி ட்ரெயினிங் தேனே கே லியே நிமித்த பனே பாக்கி தோ ஆப் 92 சே யஹா பேஹத் யஜ்ய மே ஜஹா தேஷ் விதேஷ் சே சப் பச்சே பாபா கே யா நீ ஜானே வாலே அஜ்ஞானி பி சாய் சிவிர் மே சாய் சம்மேலனோ மே குச் நா குச் ரீதி சே ஆதே ஹி ரஹதே சப் ஆப்கா லாப் லேத்தே சப்கா சப்கோ ஆப் லாப் தேத்தே பி ஹோ சப் சந்துஷ்ட ஹோகர்கே ஜாதே குஷ் ஹோகர்கே ஜாதே சம்மேலன் மா சம்மேலன் வர்க்ஷாப் யா ராஜயோக் சிவிர் யா டீச்சர்ஸ் ட்ரெயினிங் யா ஹமாரா யே பட்டி கே நீச்சே ஊப்பர் கே காரியக்ரம் ஆர் தேஷ் விதேஷ் மே பி ஜஹா பி ஆப்கா நிமந்த்ரண் ஹோதா ஹே வஹா ஆப் அப்னி பஹுமூல்ய சேவாயே தேனே கே லியே ஹமேஷா தயார் ஹோத்தே ஹோ ஹாஸ் பாபா கே லாஸ்ட் மே ஜோ அபி தோடே சமய சே ஆப்கி சேவாயே ஹே கீதா கே பகவான் கே விஷய பர் ஜோ பாபா கேதே அந்திம் பம் சப்கோ ஃபேக் கர்கே ஹல்சல் மே லானா ஹே ஆர் உஸ்ஸே பாபா கி பிரத்யக்ஷதா ஹோ உஸ்கே லியே ஆப்னே பஹுத் ஹி ஸ்டடி கர்கே மந்தன் கர்கே அலக் சப்தாஹ் தயார் கியா ஹே ஜ ஜாத்தே ஹோ சப்தாஹ் ரக்னே கே லியே கரானே கே லியே ஆர் ஹாஸ் பொலிட்டிஷியன் விங் கே பி ஆப் ஹெட் குவார்ட்டர் கோஆர்டினேட்டர் ஹோ ஐசே தோ அதி வியஸ்த ஹோ ஆஜ் சே ஹி ஷாயத் ஆஜ் சே ஹி ஷுரூ ஹோத்தி ஹே கேன் சரோவர் மே பொலிட்டிக்கல் விங் கி கான்ஃபரன்ஸ் ஆதி ஃபிர் பி ஹம்னே தோடா ஃபோர்ஸ் கியா கி ஆப்கோ ஆனா ஹே ஆயே ஹி அகலே தின் தே தூஸ்ரே தின் ஹி ஹமே கல் ஹி ஷாயத் மிலே ஆர் आपने व्यस्त होते भी हाँ बोला इसलिए बहुत बहुत एडवांस में हम धन्यवाद भी दे देते हैं पहले बाद में तो देंगे ही तो बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं तो बड़ी एकाग्रता से ध्यान से जो भी सुनाए अच्छी तरह से सुनकर समझकर फिर अनुभव करने का लक्ष्य रखेंगे तो मैं अभी உஷாபென் ஜி அனுரோத் கர்த்தி ஹூ கேஜ் கா விஷய் ஸ்வஸ்திதி கி சுரக்ஷா பஹுத் ஜரூரி ஹே சப்சே பஹலி சேஃப்டி ஸ்வயம் கி சாஹியே தோ ஹம் பஹலே ஸ்வயம் கோ கேசே அப்னி மஜ்பூத் ஸ்திதி மே அச்சி ஸ்திதி மே சேஃப் ரக்கே உஸ்கே பாரே மே அனுபவ யுக்த ஹமாரே கிளாஸ் பி ஹோகி ஆப்கே லியே யஹி கஹுங்கி கி கலியுக் கி குட்டில் ராத்ரி மே ஆப் ஜல்தி ஹுயி மசால் ஹோ அலங்கிருத் கரு கின் சப்தோ மே ஆப் தோ பேமிசால் ஹோ ஆப் தோ பேமிசால் ஹோ ஓம் சாந்தி.
ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. பாபா நே ஹம் பச்சோ கோ बहुत सुंदर ये मंत्र भी दिया है अपनी स्वस्थिति की सुरक्षा के लिए। ओम शांति का महामंत्र हमें कई बातों में शांति में रहना सिखाता है। शांति स्वरूप हमारा हो उसकी प्रेरणा देती है, और साथ ही साथ हर वक्त हमें ध्यान खींचवाता है कि मुझे क्या करना है, बाबा ने मुझे किस लिए सिलेक्ट किया है, सुख शांति की स्थापना के लिए सिलेक्ट किया है, तो मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए उसकी अटेंशन दिलाता है। इसलिए दादी भी हमेशा 3 बार ओम शांति बुलवाती है और यही कहती है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है ना? ये हर वक्त ध्यान हमारा बना रहे। वर्तमान समय में समय को हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समय किस ओर आगे बढ़ता जा रहा है, और कैसे बाबा की कई मुरलियों से, साकार मुरलियों से भी ये इशारा मिलता ही रहता है कि बच्चे आने वाले समय कितना हलचल वाला होगा, कितनी परिस्थितियां या समस्याओं से घिरा हुआ होगा, कितने तूफानों भरा होगा, क्योंकि माया अपना अंतिम दाव तो जरूर चलाएगी ही, और इसलिए जाते जाते भी ऐसा तूफान क्रिएट करेगी जो कई बार जो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या होगा, गिर जाएंगे या माया के वश हो जाएंगे या वापस आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती भी हो जाएंगे, क्योंकि ये माया की एक चाल होती है। जब ऐसे समय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हलचल में लाने का जो कार्य है माया का, तो हलचल में क्या ले आती है, हमारी स्थिति को हिला देती है। ऐसे ऐसे पेपर आएंगे जो स्थिति हलचल में आ जाएंगी, तो इसलिए आवश्यकता है कि मुझे अपनी स्थिति की, स्वस्थिति की सुरक्षा करनी है, ताकि हम किसी भी तरीके से माया कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे लेकिन फिर भी हम हलचल में ना आए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका अभ्यास करना है, जिसको जीवन के अंदर धारण करना है, ताकि हम अपने स्वस्थिति के आसपास एक ऐसा कवच तैयार कर ले जो कवच हमें सदा सुरक्षित रखेगा। तो उसके लिए 5 बातें हम आपको बताएंगे। ये 5 बातों को हमें जीवन के अंदर इस तरह से अपनाना है ताकि हम अपनी स्थिति को अचल, अडोल, निर्विघ्न बना सके। सबसे पहली बात है कि अपनी स्वस्थिति की सुरक्षा के लिए स्वमानधारी बनना। स्वमान, रोज भट्टी के अंदर भी आपको सुबह सुबह क्या मिलता है, आज का स्वमान क्या है, मिलता है ना कि भाई आज का स्वमान क्या मिला है, रात से ही आपको मिल जाता ताकि आप सुबह में अमृत वेले से उस स्वमान में अपने आप को स्थित कर देते हैं। तो खाली भट्टी तक ही ये सीमित न हो, लेकिन यहां से जाने के बाद भी ये अभ्यास हम चालू रखे कि रोज अपने आप को कोई ना कोई सुंदर श्रेष्ठ स्वमान दे। बाबा की एक अव्यक्त मुरली याद आती है कि बाबा ने जिसमें कहा कि कभी स्वमान की लिस्ट निकालो, और इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर सारी लिस्ट भी निकाली है कि कितने स्वमान हमें बाबा से मिले हैं। और हर रोज नवीनता का अनुभव करने के लिए हर रोज एक नया स्वमान हम धारण करें, और खाली उसको अमृत वेला रिवाइज करे या उस स्वरूप में स्थित हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन सारा दिन भी उस स्वमान में रहने का अभ्यास करे, उसका बार बार अटेंशन हम अपने ऊपर रखे कि मैं ये स्वमान की सीट से नीचे तो नहीं आई, क्योंकि माया उसी को हिलाती है जो सीट से नीचे उतरता है, जो सीट पर रहता है उसको माया कभी हिला नहीं सकती है, और जो सीट पर है वो हिल भी नहीं सकता है क्योंकि सीट पर सेट है। तो इसीलिए सबसे पहले स्वमानधारी बनना, स्वमान को रिपीट नहीं करना है लेकिन स्वमान स्वरूप हो जाना। आज जो भी स्वमान मैंने लिया अमृत वेले से लेकर के, उस स्वमान को मैं इस तरह से स्वरूप में ले आऊं, उसके ऊपर चिंतन करूं, उसकी धारणाओं के ऊपर चिंतन करूं, उसके फायदे के ऊपर चिंतन करूं, तो क्या होगा कि उस स्वमान के प्रति अटेंशन हमारा बहुत सहज बना रहेगा। इसीलिए स्वमान में स्थित हो जाना। अच्छा, हम स्वमान में हैं उसकी पहचान, स्वमान में हम स्थित है या नहीं है उसकी पहचान क्या? हाँ, चेहरे से दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? हाँ, हंसते रहते हैं और रूहानियत दिखाई देंगे। जो स्वमान में है उसकी पहली निशानी है सम्मान देने वाले। स्वमान है तो खुद उस स्वमान का भी सम्मान करने वाले। तो जो खुद अपने स्वमान का सम्मान करता है वो दूसरों का भी सम्मान करता है, क्योंकि दूसरे को उसी नजर से देखता है। जब दूसरों को भी उसी नजर से देखते हैं तो सहज उसके प्रति रिगार्ड, सम्मान पैदा होता है। अक्सर हमारे व्यवहार में, बोल चाल में, स्वमान में नहीं होगा तो क्या होगा, किसी ने थोड़ा भी कुछ बोला तुरंत क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ बोल निकल जाएंगे, उलट पुलट बोल देंगे, तो सम्मानधारी नहीं होगा। और इसीलिए जहां दूसरों का सम्मान नहीं है तो नेचुरल है, अगर स्वमान में नहीं है तो उसके बदले क्या होगा, अभिमान में होगा, या स्वमान है या अभिमान है। और जब अभिमान में है तो अपमान की फीलिंग भी जरूर आएगी, तो किसी ने कुछ कह दिया तो अपमान महसूस होगा, और अपमान महसूस होगा तो उलट सुलट कुछ निकल जाएगा, तो सामने वाले का सम्मान नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देह अभिमान ये मिट्टी है, तो मिट्टी में पैर रख दिए, सीट पर भी अगर बैठे हैं लेकिन मिट्टी में पैर भी रख दिए तो भी हलचल में जरूर, क्योंकि माया तो पैर से खींच लेंगी। तो देह अभिमान की मिट्टी में आ गए तो पहला अटैक देह अभिमान का होता है ना। तो या तो स्वमानधारी है या देह अभिमान वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहे जितने स्वमान के स्वरूप में रहेंगे और जितना हम अपने स्वमान की उस सीट का सम्मान करते हैं उतना देह अभिमान की मिट्टी से बहुत दूर, तो अपमान की फीलिंग से दूर, अगर कोई उल्टा सीधा बोलता भी है तो उस वक्त अंदर में यही रहम भाव आता है कि बाबा इसका भी कल्याण हो, शुभ भावना शुभ कामना आएगी उसके प्रति। तो इसीलिए पहली सुरक्षा अपनी स्थिति की करनी है, जो बाबा हमेशा कहते मैं और मेरापन। ये मैं और मेरापन ही हमारी स्थिति को हलचल में लाने के निमित्त बनता है। तो इसीलिए सबसे पहला कवच हमें अमृत वेले ही धारण कर लेना है। कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान में अपने आप को स्थित कर लो, बाबा से उसी स्वमान की सीट में सेट होकर के वाइब्रेशन ले लेने हैं। और जब बाबा से लाइट की किरणें अंदर में भर ली उस स्वमान की सीट पर, फिर देखो सारा दिन उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ही कुछ होगा तुरंत आपको याद आ जाएगा उस स्वमान की सीट पर सेट होकर के आप सामने वाली आत्मा के साथ व्यवहार में आएंगे तो कोई आपकी स्थिति को हलचल में नहीं ले आ सकेंगे। तो पहली सुरक्षा हमें करनी है स्वमान में स्थित होकर के अभिमान और अपमान से अपनी सुरक्षा। दूसरी बात का अटैक जो होता है उससे अपने स्थिति की सुरक्षा करनी है शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, स्वचिंतन, आत्मचिंतन कहो, चिंतन। क्योंकि माया का अटैक मन के ऊपर पहला होता है और वो हमारे मन को ही क्या कर देती है, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, नेगेटिव चिंतन में बहुत जल्दी ले आती है, बहुत जल्दी ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखने के लिए स्वचिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक चिंतन या ज्ञान का मनन चिंतन जितना करते हैं, उस ज्ञान के मनन चिंतन से हम अपनी मन की स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर ये चिंतन नहीं है तो पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन स्वाभाविक हो जाना है और धीरे धीरे वो नेगेटिव चिंतन की ओर भी ले जाएगा। आज दुनिया अगर देखे तो सबसे ज्यादा दिन प्रतिदिन लोग डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? नेगेटिव चिंतन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, व्यर्थ चिंतन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो दुनिया का माहौल ऐसा हो रहा है, एक परिवार के अंदर भी एक व्यक्ति अगर डिप्रेशन का शिकार होता है तो पूरे परिवार को प्रभावित करता है कि नहीं करता है अपने विचारों के वाइब्रेशन से। तो इसीलिए अगर वो नेगेटिव चिंतन करके भी पूरे घर का माहौल वाइब्रेशंस खराब कर सकते हैं तो हम एक व्यक्ति शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करके सारे घर के वाइब्रेशंस को क्या करें, परिवर्तन कर सकते हैं। ये ताकत है, क्योंकि पॉजिटिव में पावर है, नेगेटिव में पावर नहीं है। नेगेटिव में नेगेटिव पावर जरूर है लेकिन फिर भी वो कमजोरी वाला पावर है, पॉजिटिव पावर शक्तिशाली पावर होता है। तो इसीलिए अपनी स्थिति की सुरक्षा करनी हो तो सुबह सुबह जैसे स्वमान की सीट धारण कर ली, फिर उसके विषय में श्रेष्ठ चिंतन में अपने मन को लगाए रखे, है ना? उसके फायदे को सोच करके, जैसे कहा, या उसकी अनेक प्रकार से धारणाओं को सोचते हुए, उनको उस स्थिति की विशेषताओं के बारे में सोचते हुए, उसके फायदे को लेकर के हम अपने श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन में रहे। क्योंकि दूसरा अटैक माया का, देह अभिमान के कारण या खुद को कुछ बहुत ज्यादा समझता है या खुद को बहुत लो समझता है, लेकिन दूसरा अटैक पर चिंतन का जो होता है कि दूसरों को देखना, जो बाबा कई बार कहते हैं दूसरों को देखने की दृष्टि हमारी बहुत शार्प हो जाती है, उसकी कमी कमजोरी पर पहले ध्यान जाता है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, हर आत्मा के प्रति भी शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, बहुत सुंदर चिंतन करते जाएं। और जितना हम श्रेष्ठ चिंतन करते जाएंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना सुंदर परिवर्तन आता जाता है, आपकी स्थिति कितनी सुंदर बनी रहेगी। सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग से तो स्थिति अच्छी ही रहेगी, है ना, कोई हिला नहीं सकेगा। तो उसको सुपरफिशियल लेवल पर नहीं करना है। शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग भी एक सुपरफिशियल लेवल पर होता है, एक डीप महसूसता के आधार पर उसको करना होता है। सुपरफिशियल लेवल पर करेंगे तुरंत ही जैसे नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे तो हमारा चिंतन भी बदल जाएगा, लेकिन डीप उसकी धारणा के लेवल पर हम करते हैं तो हमें अंदर से कोई भी हिला नहीं सकता है, वो वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का लेवल हमारा हाई हो जाता है और हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा क्रिएट हो जाता है। जितना आप सोचते जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करते जाएंगे, उस स्वमान की स्थिति पर बैठ करके, तो एक पॉजिटिव ओरा हम अपना क्रिएट करते हैं। तो उस पॉजिटिव ओरा के अंदर कोई भी आत्मा के नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं हो सकता है, कवच तैयार हो जाता है, जिसको बाबा ने पहले भी कई बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे अपने आसपास एक लाइट का प्रभा मंडल देखो और उस प्रभा मंडल में अपने आप को स्थित करो। तो सुबह जब अमृत वेला हम बैठते हैं और बैठते ही अपने आप को उस प्रभा मंडल के अंदर, बाबा के लाइट की किरणों के प्रभा मंडल के अंदर आप अपने को देखो और फिर धीरे धीरे सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, श्रेष्ठ चिंतन करते हुए, सकारात्मक चिंतन करते हुए इस ओरा को बढ़ाना है मुझे। और जितना ये ओरा बढ़ेगा अपने आसपास उतना कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है या मेरी स्थिति को हलचल में नहीं ला सकती है। तो ये दूसरा तरीका है अपनी स्वस्थिति की सुरक्षा के लिए। फिर तीसरा तरीका है जिसको कहा जाता है साइलेंस या अंतर्मुखता की स्थिति। कई बार बाबा की मुरली में हम सुनते हैं कि बच्चे कोई डिबेट करने आए, कोई गुस्सा करता है आपके सामने, आप मुख में मुलरा डाल दो। मुख में मुलरा डाल दो मतलब साइलेंस हो जाओ। बहस करने वाले के साथ बहस कभी नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि उस वक्त इतने उनके अंदर थॉट्स होते हैं गुस्से के, नेगेटिविटी के, कि उस समय आप उसको कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे वो आपकी बात सुनने के मूड में ही नहीं है। इसलिए उस वक्त साइलेंस हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। और जितना अंडरग्राउंड होंगे तो उनकी बातें ऊपर से चली जाएंगी, वो आपकी स्थिति को इफेक्ट नहीं करेंगे। साइलेंस, साइलेंस इज गोल्डन, इसीलिए कहा जाता है। और जब उस साइलेंस में आप स्थित हो जाएंगे, वो कितना भी ताली बजाने का प्रयत्न करे लेकिन हम ताली दे ही नहीं उसको, क्या बजाएगा? बोल बोल करके चला जाएगा, बराबर है ना। और उस वक्त उसको शुभ भावनाओं का दान दो, अच्छी फीलिंग्स दो, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा उसके बाद अगर आप कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे उस स्वमान की स्थिति में स्थित होकर के, तो आपकी बात को सुनेगा भी, समझेगा भी। लेकिन जिस समय वो उग्र स्वरूप में होता है उस समय वो कभी कोई बात को एंट्री देता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख में मुलरा डाल दो, साइलेंस हो जाओ, उसको शांति का दान दो उस वक्त। और शांति का दान देते हुए इसके मन को भी शांत करो, उसको आप सपोर्ट दो अपनी स्थिति के द्वारा, ताकि वो भी उस हलचल से धीरे धीरे अचल स्थिति में आ जाए। अंतिम समय ऐसे बहुत किस्से आएंगे, ऐसे बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन वाले आएंगे, ऐसे बहुत लोग डिप्रेशन वाले आपके सामने आएंगे, वो आपके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उस वक्त साइलेंस, आप सोचेंगे मैंने कुछ किया नहीं, मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं, वो इस तरह से क्यों मेरे साथ में कर रहा है या इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। बाबा कहते हैं वो इतना फ्रस्ट्रेशन में खुद है तो फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा ना, कहां ना कहां, जो कोई पहचान वाला हो या न हो वहां ही निकालना चालू कर देगा। अगर आपकी स्थिति की सुरक्षा नहीं होगी तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और पड़ेगा तो आपके अंदर भी हलचल आएगी कि नहीं आएगी। और हलचल में आकर के हमने कुछ कहा तो वही कह करके जाएगा, अरे भाई मैं तो अज्ञानी था, मैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन में था, इसलिए कि तुम क्यों फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तू तो एक ज्ञानी है ना, कह के जाएगा ना। और उस समय आपको याद आया, अरे इसने मेरे को क्या कह दिया, मैंने उसने याद दिला दिया कि मैं ऊंची स्थिति वाला हूं, मुझे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हो जाने के बाद क्या होता है, फिर कुछ नहीं कर सकते, उसको ठीक भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप सॉरी भी कर लेंगे तो भी वो सॉरी स्वीकार करने के उसमें नहीं होता है। तो इसीलिए तीसरा है जो बाबा कहते हैं साइलेंस का अनुभव, एक सेकंड में साइलेंस, मना फुल स्टॉप लगाने का इतना अभ्यास हो हमें, जितना जल्दी आपका फुल स्टॉप लगेगा उतना ही सहज रीति से आप साइलेंस में स्थित होकर के उसको शुभ भावना का दान देते हुए, और वो सचमुच बाद में रियलाइज करेगा कि देखो मैंने इतना गुस्सा करने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी ये व्यक्ति कितना सहनशील है। आपका प्रैक्टिकल स्वरूप से उसको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि धीरे धीरे वो भी शांत होकर के वो खुद सॉरी करके जाएगा कि माफ करना, मैं अपने फ्रस्ट्रेशन में था इसीलिए मैंने आपसे कह दिया, लेकिन आपने मेरे को भी बचा लिया है ना। तो इसीलिए साइलेंस का अभ्यास जो बाबा ने पिछले कई सालों तक हमें ड्रिल कराई, एक सेकंड में साइलेंस हो जाओ। तो दिन में जब हम ड्रिल करते रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी ड्रिल करने का एक बहुत सुंदर माध्यम है, हर घंटे के लिए भी बाबा ने ड्रिल करने का अभ्यास हमें सिखाया। ये ड्रिल क्यों करना होता है, ताकि हम अपनी स्थिति की सुरक्षा करें आने वाले समय के लिए। ये एक सेकंड में महसूस करते हुए, वातावरण को महसूस करते हुए खुद साइलेंस में हो जाओ, आप किसी बात में फंसेंगे नहीं। नहीं तो आप देखते हैं दुनिया में जिसको ज्ञान नहीं, ये माइंड को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास नहीं है, साइलेंस की स्थिति में जाने का अभ्यास नहीं है, कोई दूसरा किसी को कह रहा होता है और वो तीसरा जाकर के बीच में टपकता है, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर, और फिर बड़ा झगड़ा हो जाता है, और जब उसको महसूस होता है तब बड़ा पश्चाताप भी करता है, लेकिन तब तक तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, काम खराब हो जाता है, कितनी बातें बीच में आ जाती है दीवार बन करके, और हमेशा वो दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो जाते होते हैं कि नहीं होते। तो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है खाली सुनने के लिए तो नहीं दिया है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना कितना जरूरी है। इसीलिए सेकंड में फुल स्टॉप, जितना हम अपने मन को सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर नहीं जाओ, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, ये क्वेश्चन मार्क वाले रास्ते पर नहीं जाओ। जैसे ही क्वेश्चन मार्क के रास्ते पर गए, और आपने बात को खोदना चालू किया, क्यों कहा उसने ऐसा, कैसे कह दिया, क्या समझता है अपने आप को, ये क्यों क्या कैसे, ये क्वेश्चंस पूछना चालू किया और वो खोदते 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 आपके कई बातें ऐसी पता चलेगी जो बाद में आपको लगता है ऐसा तो नहीं जानते थे ना, तो ज्यादा सुखी होते थे। खोद खोद करके क्या निकाला हमने, और जो बातें जानकारी के रूप में मिली न उसको हजम कर पा रहे हैं, न उस व्यक्ति को माफ कर पा रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। बार बार यही आता है, इसे तो नहीं जानते थे तो ज्यादा सुखी थे, जानने के बाद और दुखी हो गए, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते हैं किसी को, कितनी हलचल अंदर क्रिएट होती है। इसीलिए बाबा कहते, अच्छा किसी ने कह दिया ना, फुल स्टॉप, बात को खत्म करो, बात को खोदो नहीं। जितना बात को खोदते जाएंगे कुछ नहीं निकलना है नीचे से, बात को खोद खोद करके कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका आउटपुट कुछ नहीं है। कोई प्रैक्टिकल बेनिफिशियल आउटपुट हो तब तो आप खोदो उस बात को, लेकिन जब प्रैक्टिकल कोई आउटपुट ही नहीं होना है, हमें काम आए ऐसी कोई बात हमें मिलनी नहीं है, तो खोदने की फायदा है, समझदारी है। तो इसीलिए बाबा कहे फुल स्टॉप पहले से लगा दो। कोई आपको कहेगा अरे तुम जानकारी तो ले लेता था, कहो क्या करना है जानकारी लेकर के, यही कह दो, जानकारी लेकर करना क्या है हमें, और जानकारी नहीं लेंगे ना तो आप बड़े सुखी रहेंगे। जितना व्यर्थ बात को खोदते जाएंगे, प्राप्ति कोई नहीं है, एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। इसीलिए बाबा कहे फुल स्टॉप, लगाओ बिंदी, है ना। किसी ने मेरे को पूछा, बहन जी फुल स्टॉप कैसे लगाना, कोई बिंदी ऐसे तो है नहीं, लगा दिया यहाँ बिंदी, बंद हो गया, विचार बंद हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। फुल स्टॉप कैसे लगाना होता है, संकल्पों को फुल स्टॉप कैसे लगाएं, संकल्प चलते रहते हैं हमारे योग में भी, तो संकल्प को फुल स्टॉप कैसे संकल्प को फुल स्टॉप लगाना माना बात को एक दिशा दे देना, जो व्यर्थ की दिशा में जा रहा है उसके बदले एक श्रेष्ठ दिशा। मन तो चलेगा, संकल्प स्टॉप नहीं होंगे, लेकिन आप सोचो ये दिशा दो अपने मन को, इसमें भी कोई कल्याण होगा, कल्याण होगा ये सोचा माना फुल स्टॉप, अपने मन को एक दिशा दे दी। कोई फुल स्टॉप ऐसे कोई चीज थोड़ी है जो उठा करके लगा दी और संकल्प बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं बंद होगा। इसलिए जो संकल्पों की रफ्तार चल रही है, जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, उस बात को देखेंगे, उसकी नेगेटिविटी को महसूस करेंगे, तो बहुत तीव्र गति से संकल्प चलेगा। लेकिन उस वक्त ये सोच लो इसमें भी कोई कल्याण जरूर होगा, और जब कल्याण सोचेंगे तो कल्याण सोचने से ही आपके संकल्पों की गति धीमी हो जाएगी। धैर्यता, आज कान बाबा ने धैर्यता आ जाएगी कि थोड़ा सा इंतजार करे, समय क्या कहना चाहता है उसके लिए वेट एंड सी, वेट एंड सी, समय कुछ न कुछ गुह्य रहस्य स्पष्ट करेगा इसके पीछे भी। इसको कहते हैं फुल स्टॉप, दिशा चेंज करना। नेगेटिव दिशा में जा रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उसके बदले ये सोचो ड्रामा में जरूर कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है, ये है फुल स्टॉप लगाना। दूसरा ये सोचो, फुल स्टॉप लगाना माना कि भगवान का इतना प्यार है जो मुझे कुछ देना चाह रहे हैं, मुझे कुछ देना चाह रहे हैं, है ना। इसीलिए कोई भी घटना जब होती है उस घटना से हमें क्या मिलता है, समझो बहुत नेगेटिव घटना है आपके सामने, उससे मुझे क्या मिला, पहली बात उससे मुझे अनुभव मिला, अनुभव, मेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ने लगती है। क्योंकि आज दिन तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं सरल सहजता से अगर चलूंगा तो ऐसा होगा, तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ी है ना। अनुभव मिला आपको, शायद वो अनुभव आगे जीवन के अंदर बहुत काम आने वाला है। वो अनुभव मेरे जीवन में बहुत जरूरी था, इसलिए ड्रामा ने ऐसी युक्ति रची कि ये घटना जो हुई उसमें मुझे अनुभव दे करके गया तो दूसरी बार मैं धोखा नहीं खाऊं। क्योंकि अंतिम समय शायद अनुभव की कमी के कारण ये परिस्थिति बहुत विकराल महसूस होती, लेकिन अब अनुभव मिल गया तो अब जब दोबारा ड्रामा में ऐसी कोई घटना होगी तो हम पहले से ही अपने आप को उस मैच्योरिटी के साथ, उस गंभीरता के साथ उसको हैंडल कर पाएंगे, तो हलचल में तो नहीं आएंगे। तो मैच्योरिटी और ये अनुभव मेरे जीवन में बहुत जरूरी था कि नहीं था। तो हर घटना, कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव घटना है, वो भी आपको एक पॉजिटिव अनुभव दे करके जाती है। जो अनुभव आपके जीवन में बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो अनुभव नहीं होगा तो आगे के पेपर जो है उसको क्रॉस करना बहुत कठिन हो जाएगा। और वही अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मते सुगति क्या स्टेटस को प्राप्त करेंगे, किस गति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए ड्रामा ने एक बहुत अनुभव, बड़ा अनुभव, वैल्यूबल अनुभव मुझे समय से पहले दे दिया। ये सोचने से ही फुल स्टॉप लगेगा कि नहीं, ये सोचने से ही फुल स्टॉप लगेगा कि ड्रामा ने मुझे क्या अनुभव दिया इस घटना के माध्यम से। तो नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, लेकिन फुल स्टॉप। और जब उस अनुभव के विषय में सोचेंगे तो बाबा के प्रति अंदर से थैंक्स निकलता है कि थैंक्स बाबा, शायद ये अनुभव की मुझे बहुत आवश्यकता थी। इसलिए बाबा कहे अंतिम समय तक पेपर तो चलते ही रहेंगे, पेपर नहीं आए ये हो नहीं सकता, लेकिन हर पेपर हमें एक स्टेप आगे बढ़ाता जा रहा है, अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। जिसके सामने कोई पेपर ही नहीं आता है, माना वो वहां का वहां ही ठहरा हुआ है, वो मंजिल की ओर आगे बढ़ नहीं सकता है। और अंतिम समय में अगर वो अनुभव नहीं तो वो पेपर उसको क्या करेगा, क्रश कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है। तो फुल स्टॉप, साइलेंस, शांति में बैठ के एनालाइज करके देखो तो आपको पता चलेगा कितना सुंदर अनुभव ड्रामा ने आपको दिया। तो फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा और अपनी स्थिति की सुरक्षा बनी रहेगी। चौथी बात, अपनी स्थिति की सुरक्षा करने के लिए जीवन के अंदर बाबा ने हमें संयम, नियम और मर्यादाएं दिया है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर बात के लिए एक संयम दिया है, एक नियम दिया है, मर्यादाएं दी है। कैसे उठना है, चलना है, बात करना है, व्यवहार कर, हर बात के लिए एक मर्यादा है कि नहीं है। उठना कैसे है, बात कैसे करना है, चलना कैसे है, हर बात के लिए हमें एक संयम दिया है, एक नियम दिया है। अमृत वेले का नियम हमें दिया, क्यों दिया, इसके पीछे भी कोई राज है। रोज मुरली क्लास सुनना, क्यों दिया है ये नियम हमें। तो ये नियम, संयम और मर्यादाएं जितना उसको पालन करते जाते हैं उतनी मेरी स्थिति की सुरक्षा रहेगी। प्रैक्टिकल में हम सभी अनुभव करते हैं कि आज बाबा का एक ही संयम अगर लिया जाए कि बाबा ने हमें बाहर का खाना पीना मना किया है, है ना, ये संयम, ये मर्यादा अगर ली जाए कि ये नियम जो बाबा ने दिया कि बच्चे तुम्हें कहीं बाहर का खाना नहीं है। कई बार हम देखते हैं कितनी बातों से हम लोग बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं। बाहर खाने वाले लोगों को कई बार पेट अपसेट होता है, कुछ पॉइजन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, और हम लोग ने नहीं खाया होता है तो बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं। और बच गए तो हमारी स्थिति तो ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। जिसका जो बाहर खाता पीता है और फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद वो अपनी स्थिति को बैलेंस में रख सकेगा, कंट्रोल कर सकता है। तो बाबा का हर नियम, मर्यादा और संयम जो हमें मिला है, जो भी हमें जीवन के अंदर सिद्धांत मिले हुए हैं, ये हर सिद्धांत के पीछे कोई न कोई इतना डीप रहस्य है, जो आज नहीं, समय आने पर स्पष्ट होगा। और उस समय अपने आप को इतना भाग्यशाली समझेंगे कि मेरा जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं है। ये संयम ने मेरी सुरक्षा की, ये महसूस होगा। और उस वक्त अंदर से थैंक्स बाबा निकलेगा, थैंक्स बाबा, आज तुम अगर हमें संयम मर्यादाएं नहीं देता था तो आज पता नहीं हम कहां पहुंच गए होते। कई बार दुनिया में हम देखते हैं, महसूस करते हैं, आप लोग तो दुनिया में रहते हैं, आप लोग सुनते हैं रोज के किस्से कि फलाना व्यक्ति कहीं बाहर गया, किसी ने उसको पता नहीं क्या मंत्र वाला तंत्र वाला खिला दिया और उसकी बुद्धि क्या कर दी, भ्रष्ट कर दी। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तंत्र मंत्र वाला खिलाते और बाबा ने हमें नियम दिया, बच्चे तुम्हें बाहर कहीं खाना नहीं है, तो हम तंत्र मंत्र वाले खाने से भी बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं? बच जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बच जाते हैं। और अंदर से हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो संयम, नियम और मर्यादाएं हमारी स्थिति की सुरक्षा करने के साथ साथ हमारे जीवन की भी सुरक्षा करते हैं, हर रीति से हमें सेफ रखते हैं। क्योंकि चारों ओर बाबा कहते हैं इतनी विकारों की आग भी बढ़ने वाली है, उस आग में भी बिल्ली के पुंगरे जैसे सेफ रहे, तो वैसे हमें बाबा ये संयम, नियम और मर्यादाओं में बांध करके सेफ रखता है। तो खाली स्थिति की सुरक्षा नहीं, हमारी जीवन की भी सुरक्षा है उसमें, है ना। और पांचवा स, देखो चार स बताए ना, पहला स्वमान, स्वचिंतन, फिर साइलेंस, फिर संयम, और पांचवा स है संतुलन। पांचवा स है संतुलन, बैलेंस। बाबा भी हम बच्चों को बहुत पूरा ज्ञान जो है हमारा, बैलेंस, बैलेंस से चलना। किस में बैलेंस चाहिए? व्यवहार परमार्थ में बैलेंस चाहिए। व्यवहार कुशल भी बनना है और परमार्थ को भी रखना है, इसका बैलेंस सिखाया है बाबा ने। कि रहना गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन कैसे रहना है, व्यवहार में आना है लेकिन कैसे व्यवहार करना है, बैलेंस सिखाया कि नहीं सिखाया? ट्रस्टी और गृहस्थी का बैलेंस सिखाया कि नहीं सिखाया? कि गृहस्थ में रहना है, ट्रस्टी कैसे रहना है, बैलेंस बताया हमें। छोड़ना भी नहीं है लेकिन वैरागी भी बनना है, ये भी बैलेंस सिखाया। रहना वही है लेकिन बेहद का वैराग्य, किस तरह मन से हमें अडॉप्ट करना है। कर्म और योग का बैलेंस सिखाया बाबा ने, कर्म भी करो योग भी हो। अगर कर्म योग नहीं है जीवन के अंदर, ये बैलेंस नहीं, तो कर्म भोग है। हर कर्म बंधन बांधने वाला, हमें भोगना का अनुभव कराने वाला हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहे बच्चे बैलेंस से चलो। जो बैलेंस से चलता है उसकी स्थिति हमेशा सुरक्षित रहती है। जहां बैलेंस नहीं है, बैलेंस गड़बड़ हो गया तो स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए स्वस्थिति की सुरक्षा के लिए जो बैलेंस से चलता है, तो बाबा कहे बैलेंस से चलने वाले को ब्लेसिंग्स, उसका प्रमाण है, ब्लेसिंग्स हर एक से प्राप्त होती है, वहां तक कि परमात्मा ब्लेसिंग्स भी उनको प्राप्त होती सहज। तो जहां परमात्मा ब्लेसिंग्स भी सहज मिल जाए तो अनुभव क्या होगा? ब्लिसफुल, ब्लिसफुल लाइफ का आनंद की स्थिति, मन सदा खुशनुमा, मन सदा प्रसन्न, मन सदा प्रफुल्लित, ये सहज उसका रिजल्ट है बैलेंस से चलने वाले का। अगर बैलेंस नहीं है तो टेंशन जरूर होगा। टेंशन हुआ ब्राह्मण जीवन में, इसका मतलब कोई ना कोई बैलेंस मेरा गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गई, बैलेंस नहीं है, बैलेंस गायब हो गया, तभी टेंशन होता है। जो बैलेंस से चलता है, ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, तो उसका चेहरा हमेशा खुशनुमा ही रहेगा, उसको कभी भी कोई भी बात स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर सकती है। लेकिन जहां बैलेंस बिगड़ा, तो बैलेंस बिगड़ते ही क्या हो गया, दूरी ही बिगड़ गई तो क्या होगा, गिरने का स्वाभाविक अनुभव, या इस तरफ गिरेंगे या इस तरफ गिरेंगे। इसलिए कई बार ब्राह्मणों को देखते हैं तो कई बार कई लोग कह देते हैं, बस इसका घर को तो देखते नहीं, बस खाली सेवा 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 के पीछे भाग रहा है, इम्बैलेंस हो गया। सेवा भी हो और घर का भी बैलेंस लेकर के चलो, तभी हरेक की ब्लेसिंग्स, खाली बाबा की ब्लेसिंग्स मिले इतना नहीं करना है, लेकिन मेरे परिवार वालों की भी मुझे ब्लेसिंग्स मिले, या ब्राह्मण परिवार वालों की भी मुझे ब्लेसिंग्स मिले, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये संतुलन ही हमको सुरक्षित रखेगा। जो व्यक्ति बैलेंस से नहीं चलता है, निंदा के पात्र बनता है, और जो निंदा का पात्र बना, निंदा सुनने के बाद उसकी स्थिति हलचल में आएगी, अचल रहेगी, हलचल में आएगी, है ना? तो इसीलिए मामा कहे, बच्चे बैलेंस में चलो, या कर्म योग या कर्म भोग, अगर बैलेंस से नहीं चलते हैं तो कर्म भोगना का अनुभव कराएगा, और वो कर्म भोगना का अनुभव जब कराता है तो उस समय स्थिति हलचल में आएगी या नहीं आएगी। हाँ? भोगना, शारीरिक भोगना भी अगर आ जाए तो उस समय अंदर में स्थिति कैसी हो जाएगी। आज एक छोटा सा ऑपरेशन भी आ जाए तो कैसी स्थिति हो जाती है, हे बाबा क्या हो गया, ये हलचल में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, जितना बैलेंस से चलेंगे तो मन इतना सुंदर संतुलित रहेगा, जो कोई भी परिस्थिति, कोई भी कर्म बांधने वाला, आपको नीचे गिराने वाला निमित्त नहीं बनेगा। आपका कर्म इतना श्रेष्ठ होगा कि हर कर्म आपको सुखदायी जीवन का अनुभव कराएगा, हर कर्म आपको हमेशा आपकी मन की स्थिति को बहुत ऊंची स्थिति में रखने के लिए आपको ऊंचा उठाएगा, बल देगा। कर्म का भी बल होता है, तो श्रेष्ठ कर्म का बल आपको ऊंचा उठाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते, बैलेंस से चलो, श्रेष्ठ कर्म भी करना है और साथ ही साथ जीवन के अंदर हर एक व्यवहार के में जब आते हैं, परिवार वालों के साथ, समाज वालों के साथ, तो व्यवहार में भी वो कुशलता हो, तभी समाज वाले भी आपको देखकर कहेंगे, इसके कर्म बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कर्म करता है, तो ब्लेसिंग्स मिलने लगे ना। लेकिन अगर व्यवहार कुशल नहीं है तो सामने वाला भी क्या कहेगा, भाई ऐसा कैसा ज्ञान है, है ना, ऐसा कैसा ज्ञान है। तो कहने का भावार्थ ये है, बाबा ने हर रीति से हमारी स्थिति की सुरक्षा के लिए हमें पहले से इन एडवांस ये सब चीजें दे दिया है। ये 5 स को हमेशा याद रख करके चलो आप जीवन के अंदर, फिर देखो आपकी स्थिति कितनी ऊंची और श्रेष्ठ बन जाती है। कोई भी नीचे की बातें आपकी स्थिति को हिलाने वाली नहीं होंगी, और हर परिस्थिति के ऊपर आपका विजयी, आपकी स्थिति की विजयी सहज हो जाएगी, है ना। तो स्वमान, शुभ चिंतन, स्वचिंतन। साइलेंस, संतुलन और संयम, नियम, मर्यादा है। ठीक है, ये पांच स याद रहेगा अपनी स्थिति की सुरक्षा के लिए, और इसी को लेकर के आप आगे बढ़ो, अपनी स्थिति को सुरक्षित कर दो, पहले से ही ऐसा ओरा क्रिएट कर दो जो कोई भी परिस्थिति आपको हिलाने वाली नहीं, हिला ही नहीं सकती है। बड़े से बड़े पहाड़ भी आ जाए ना तो भी आपको नहीं हिला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाबा को भी ऐसे अचल बच्चे चाहिए, हलचल वाले बच्चे नहीं चाहिए। आज यहाँ हलचल होती रहे तो बाबा भी क्या भरोसा करेगा उस बच्चे के ऊपर। बाबा को भी ऐसे महावीर चाहिए जो अचल हो, जो दृढ़ संकल्पधारी हो और हर बात में विजयी हो। ऐसे बच्चे के प्रति बाबा भी क्या महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। बाबा को भी नाज होगा ऐसे बच्चों को देख करके। तो इसीलिए मैं ऐसा बाबा का बच्चा हूँ, ये अपने आप को देखो। ठीक है, ठीक है, माताएं ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हिम्मत का कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, स्वयं का कवच, अभी सब कवच पहन कर रखेंगे और खुद की स्थिति की सुरक्षा में माहिर बने तो हम कोई भी बात में हिलेंगे नहीं। इतनी अच्छी बातें आप सबको मिली है, अनुभव के आधार से उषा बहन ने बताई है, तो जरूर ये हमें भी रिजल्ट देगी, तो जरूर अप्लाई करेंगे, तभी इतना समय निकाल करके आने का सफल होगा ऐसे कहेंगे। तो सब करेंगे ना प्रयोग, इन सब बातों का एप्लीकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद उषा बहन का कि हमको अति व्यस्त होते भी समय दे करके यहाँ पहुंचे। धन्यवाद है।